Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं उसे ईरान रेडियो ने तैयार किया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। सलाम दोस्तों, मैं अख्तर रिज़वी और बच्चे जिनका बचपन छीन लिया गया नामक पॉडकास्ट के छठे एपिसोड में हम इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह इसराइल फिलिस्तीनी बच्चों को हिरासत में लेता है और उनसे पूछताछ करता है। पिछले एपिसोड में हमने फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार करके अज्ञात जगहों पर ले जाने के साथ हथकड़ी लगाने, आंखों पर पट्टी बांधने और पिटाई करने जैसे दबावों के बारे में आपको बताया था। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जो कैथरीन कुक हनी एडम द्वारा लिखित पुस्तक स्टोलन यूथ द पॉलिटिक्स ऑफ इसराइल डिटेंशन ऑफ फिलिस्तीनी चिल्ड्रन से लिया गया है। पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे साथ रहिए। ২০০১ में मानव अधिकार संगठनों के अध्ययनों की परिधि में फिलिस्तीनी बच्चों की हिरासत और कारावास के बारे में भयानक रिपोर्टें सामने आई हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि हिरासत में लिए गए हर एक बच्चे को गिरफ्तारी के वक्त से लेकर रिहाई के समय तक यातनाओं, पीड़ाओं और भयानक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से गिरफ्तारी और पूछताछ की ये व्यवस्थित प्रक्रिया हजारों आज़ाद हुए बच्चों की गवाही से साबित हुई है। बच्चों द्वारा अनुभव की गई यातना से पता चलता है कि गिरफ्तारियां सैनिकों द्वारा मनमानी नहीं थीं, बल्कि इसके विपरीत पूरी तरह से संगठित और सोची समझी व जानबूझकर थीं। ये प्रक्रिया हिरासत में लिए गए बच्चों को डराने, धमकाने और उसकी एकाग्रता भंग करने की जानबूझकर की गई कोशिशों की तरह है। परिवार और वकीलों के साथ संपर्क की कमी, हिरासत केंद्रों में खराब स्थिति, सैनिकों का घृणित व्यवहार इत्यादि जैसी परिस्थितियां, ताकि हिरासत में लिया गया बच्चा पूछताछ जैसे हिरासत के अगले चरणों के लिए तैयार हो सके। दूसरे शब्दों में, डिटेंशन सेंटर्स में बच्चे खुद को सभी परिचित स्थानों से अलग पाते हैं और उन्हें बहुत ही अलग हालात और अलग परिस्थितियों में रखा जाता है, और अतिग्रहणकारी ताकतों के सशस्त्र सैनिकों और दुश्मनों से बच्चा घेरा हुआ होता है। इस प्रक्रिया में बच्चे बहुत असुरक्षित समझे जाते हैं। बच्चे की अचानक गिरफ्तारी के साथ इस प्रक्रिया की कल्पना करें। ये ठीक इसी स्तर पर है कि अवैध इसराइली तंत्र अपनी शक्ति का उपयोग बच्चों को डराने, धमकाने और जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर करने के लिए करता है। कई बच्चे, यहाँ तक कि जो बेगुनाह भी हैं, ऐसी भयावह परिस्थितियों में शारीरिक शोषण की वजह से उन बातों और गुनाहों का भी एतराफ़ कर लेते हैं जिन्हें उन्होंने ज़िंदगी में कभी अंजाम ही नहीं दिया था। इसराइल फिलिस्तीनी बच्चों को कई हिरासत केंद्रों में रखता है। हिरासत केंद्र वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों या सैन्य ठिकानों या गजा पट्टी के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही स्थित हैं। दोस्तों, आगे हम इसराइल के कुछ डिटेंशन सेंटरों के बारे में बात करेंगे। ऑफर जेल या ऑफर प्रिजन, इजरायली सेना वयस्कों और बच्चों को एक साथ ऑफर जेल में रखती है। सिर्फ अप्रैल 2002 में हजारों फिलिस्तीनी ऑफर सेंट्रल डिटेंशन सेंटर में गंदे और भीड़ भाड़ वाले कैंप्स में रह रहे थे और मानवाधिकार संस्थानों द्वारा इसे देखने और जांच करने के बाद इस केंद्र के हालात की कई फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा निंदा भी की गई थी। एक वकील ने उसी साल ऑफर डिटेंशन सेंटर का दौरा किया था। हिरासत में लिए गए कई बच्चों से मिलने के बाद उन्होंने इस सेंटर का वर्णन इस प्रकार किया। डिटेंशन सेंटर में 9 हिस्से हैं, जिनमें से हर एक में बंदियों को रखने के लिए 4 कैंप बने हुए हैं। बंदियों के बीच किसी भी तरह के संपर्क और सूचनाओं के आदान प्रदान को असंभव बनाने के लिए कैंप्स के हिस्सों को कांटेदार तारों से अलग किया गया है। जेल में बंद बच्चों में वयस्क भी शामिल हैं। कैंप्स की हालत बहुत ही खराब और दयनीय है। वे डामर पर बने हुए हैं और अंदर कई तरह के कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। कैंप्स में बिजली तक नहीं है। बंदियों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि बंदियों को खबर भी नहीं होती कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। उन्हें अपने परिवार से मिलने की इजाज़त भी नहीं होती। उनके पास किसी भी समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न या किताबों तक पहुंच नहीं है। कैंप के अंदर बैठकर बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। डिटेंशन सेंटर में डाइनिंग हॉल भी नहीं है। वे कैदियों को कपड़े भी नहीं देते। खान पान की स्थिति बहुत ही दयनीय है। भोजन आमतौर पर ठंडे और जमे हुए होते हैं। कैदी इस खाने को खाने के लिए धूप में छोड़ दिए जाते हैं। बीमार बंदियों का खाना भी अन्य लोगों जैसा होता है। सूरज डूबने के बाद कैंप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना मना है। रात में सिपाही कैदियों को परेशान करते हैं। वे हवाई शॉट मारते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं। वे कैंपों पर चीज़ें फेंकते हैं और कैदियों पर चीखते चिल्लाते हैं, जबकि कैदी चिकित्सा देखभाल और डॉक्टरों की निगरानी से पूरी तरह से वंचित हैं। इसराइल के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की सहमति व्यक्त की कि ऑफर डिटेंशन सेंटर के हालात मानकों और स्टैंडर्ड से बहुत ही नीचे हैं। मानवाधिकार संगठन ने एक याचिका में इस केंद्र के हालात की निंदा की है। इस याचिका को इसराइल के सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। जनवरी 2003 में बंदियों ने हिरासत केंद्र या डिटेंशन सेंटर के खराब हालात और इजरायली सैनिकों द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इजरायली सैनिकों ने बंदी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले और धुएं वाले ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जबकि अधिकांश कैदियों को बिना किसी मुकदमे या आरोपों के स्पष्टीकरण के जेल में ही डाल दिया गया। हुआरा डिटेंशन सेंटर, ये सेंटर नाबलस के पास सैन्य अड्डे के अंदर स्थित है। इस सेंटर में कैदियों को भीड़भाड़ वाली कोठरियों में रखा जाता है। डिटेंशन सेंटर में सफाई सुथराई का हाल बहुत ही खराब है। फर्श या दूषित गद्दों पर सोने की वजह से कई कैदियों को त्वचा रोग या चमड़े की बीमारी का शिकार भी होना पड़ता है। डॉक्टर अब्दुल फत लबादा को मार्च 2003 में इजरायली सेना ने गिरफ्तार कर लिया था और बिना किसी आरोप के जेल में डाल दिया था। वो हुआरा डिटेंशन सेंटर के हालात का वर्णन इस प्रकार करते हैं। मेरी कोठरी 3x3 मीटर की थी, जिसमें रोशनी नहीं थी और न ही शौचालय था। इसके साथ ही लगी हुई जेल की 6 कोठरियां और भी थीं। वहाँ हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी और सेल में बहुत ठंडी थी। हमारे पास सोने के लिए छोटे और बारीक गद्दे थे, जो कोठरी में फैली रुतुबत की वजह से हमेशा गीले रहते थे। हमारे पास जेल की कोठरी में खुद को गर्म रखने के लिए पर्याप्त कंबल, लिहाफ और चादरें नहीं थीं। वहाँ शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी और हमें शौच और पेशाब उन बोतलों में करना पड़ता था जो वे हमें देते थे। हमारे पास पीने के लिए एक गिलास भी नहीं था, धोने के लिए पानी नहीं था। अधिकांश कैदी पेट की बीमारियों और समस्याओं से पीड़ित थे। कब्ज, पेट में ऐंठन और डकार जैसी समस्याएं तो आम सी बात थीं। मई 2003 में हुआरा हिरासत केंद्र के कैदियों ने विरोध के तौर पर अपने गद्दों में आग लगा दी, लेकिन हालात जैसे के तैसे ही रहे। उनमें तनिक भी बदलाव नहीं आया। अगला डिटेंशन सेंटर बैते ईल डिटेंशन सेंटर है। साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस डिटेंशन सेंटर में भी वैसे ही बुरे हालात हैं। 14 वर्षीय मुनीर जहरान को 2003 में गिरफ्तार किया गया था और इस हिरासत केंद्र में डाल दिया गया था। वो हिरासत केंद्र के हालात का वर्णन इस प्रकार करता है। मुझे 11 अन्य बंदियों के साथ एक छोटी सी कोठरी में कैद किया गया था। उनमें से कुछ वयस्क थे। हमें दिन में केवल 3 बार शौचालय जाने की इजाजत थी। डिटेंशन सेंटर के अधिकारी हमें कोई सामान या कपड़े नहीं देते थे। समय गुजारने के लिए बैठने और बातें करने के अलावा हमारे पास कुछ भी काम नहीं था। कभी कभी वे हमें हिब्रू अखबार पढ़ने के लिए देते थे, लेकिन हमें तो हिब्रू भाषा आती ही नहीं थी। हम गश एटिजियन हिरासत केंद्र में पहुंचे, जो सबसे कुख्यात डिटेंशन सेंटरों में से एक है। ये जेल बैतलहम के पास यहूदी बस्तियों के एक ब्लॉक में एक केंद्रीय पुलिस स्टेशन के अंदर स्थित है। इस सेंटर में बच्चों और बड़ों को कैद करके रखा जाता है। गश एटजियन डिटेंशन सेंटर वहां दी जाने वाली भयानक यातनाओं और दुर्व्यवहारों के लिए कुख्यात है। डिटेंशन सेंटर के हालात बेहद भयानक और असहनीय हैं। जेल की कोठरियां और सेल्स इतने छोटे और इतने ठंडे होते हैं कि उन्हें रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। बच्चों को दिन में केवल 3 बार बाथरूम जाने की इजाजत होती है। उन्हें अपने कपड़ों पर या उन्हें उपलब्ध कराए गए यूज एंड थ्रो बर्तन में शौच करना पड़ता है। हर 13 दिन में कैदी 40 मिनट की ताज़ा हवा के लिए अपनी कोठरियों से बाहर निकाले जाते हैं। एडोरिंग हिरासत केंद्र हेब्रोन के पास स्थित है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इस जेल में बच्चों समेत कई कैदियों को एक छोटे से कमरे में रखा जाता है। इस जेल में खराब खाने की और खाने की कम मात्रा की वजह से कैदी कई बार हड़ताल कर चुके हैं। सालिम डिटेंशन सेंटर जेनिन के पास एक सैन्य अड्डे में स्थित है। जून 2003 में 50 से अधिक कैदी, जिनमें से 10 बच्चे भी शामिल थे, जहरीले खाने की वजह से बीमार पड़ गए, जबकि कई कैदियों को लगातार कई दिन तक दस्त आते रहे। कैंप के अधिकारियों ने रोगियों को चिकित्सा देखभाल और डॉक्टरों की सुविधा प्रदान करने से भी इनकार कर दिया। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि उन्होंने 3 बार शौचालय का इस्तेमाल करने की इजाज़त का कानून बरकरार रखा, जिसकी वजह से बंदियों को अपनी कोठरियों में ही शौच करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल फिलिस्तीनी कैदियों के साथ व्यवहार को लेकर सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का उल्लंघन करता है। इन हिरासत केंद्रों या डिटेंशन सेंटर्स में इसराइली सैनिकों द्वारा जानबूझकर बच्चों से की जाने वाली पूछताछ और हिरासत के बारे में कई सबूत मौजूद हैं। हेब्रोन के कैसार क्षेत्र के 15 वर्षीय MR बताते हैं, 20 जुलाई को उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को 1.5 मीटर लंबाई और चौड़ाई वाली सेल में अकेले अकेले बंद कर दिया। वहां ना शौचालय था, ना रोशनी और ना ही हवा। 2 घंटे बाद सिपाही आए और मेरे दोस्त को अपने साथ ले गए। मैं बहुत डरा हुआ था। पूरे कमरे में, या दूसरे शब्दों में कह ले कि पूरे सेल में अंधेरा छाया हुआ था। आधी रात को इजरायली कैदी दरवाजे पर लात मार रहे थे और तेज आवाज में गाने सुन रहे थे। मुझे गानों के बोल समझ में नहीं आ रहे थे। तभी मैंने महिलाओं की चीख पुकार और अन्य लोगों की दर्दनाक चीखें सुनी। 17 वर्षीय MY को पूछताछ के लिए शवक के एजेंट हेब्रोन डिटेंशन सेंटर ले गए। उन्होंने MY को उसके कबूलनामे के बदले फल और जूस देने का वादा किया था। आखिरकार उसने पत्थर फेंकने की बात स्वीकार कर ली। इसराइलियों ने उस पर हथगोला फेंकने की बात कबूल करने के लिए दबाव डाला, लेकिन MY ने यह बात कबूल नहीं की। उन्होंने MY को किंडरगार्टन की कुर्सी से बांध दिया और उसके सिर पर एक गंदा बोरा डाल दिया। पूछताछकर्ता ने उसे गरेबान से पकड़कर उठाया और इतना हिलाया कि वो बेहोश हो गया। फिर उन्हें एकांत कारावास में ले जाया गया और कई महीने के लिए उसे वहां बंद कर दिया गया। एक और रिपोर्ट बैतलहम के 14 वर्षीय BN की कहानी सुनाती है। पूछताछ के दौरान BN बहुत डर गया था और उसने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को कबूल कर लिया। इसराइलियों ने उससे एक कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा ताकि वो अपने घर जा सके। दूसरी ओर पूछताछकर्ताओं ने उससे कहा कि उस पर जो आरोप लगे हैं उसके हिसाब से वो बहुत ही छोटा है। कागज पर हिब्रू भाषा में कुछ लिखा था और BN को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आखिर में BN को 3 साल की जेल और बड़े जुर्माने की सजा सुनाई गई। एक और रिपोर्ट हेब्रोन जिले के 15 साल के SM की कहानी सुनाती है। SM कहता है, मैं इसराइलियों द्वारा पीटे जाने और पूछताछ से थक चुका था, बल्कि यूं कहूं कि मैं इतना मार खा चुका था कि मैं पूरी तरह से ऊब चुका था। आखिर में वे मुझे बाथरूम में ले गए। पूछताछकर्ताओं में से एक ने मेरा सिर पकड़कर शौचालय में डाल दिया। मेरा दया की भीख मांगना बेकार गया। मैं बहुत डर गया था। जब मैं पूछताछ कक्ष में वापस आया तो मैंने फैसला किया कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है मैं उसे कबूल कर लूँगा, भले ही मैंने सेटलर्स की कारों पर सिर्फ 5 पत्थर ही फेंके थे। अगली रिपोर्ट अल अरूब शरणार्थी कैंप से 17 वर्षीय वाई की है। इजरायली पूछताछकर्ताओं ने उसके सिर और चेहरे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। उसका सिर मेज पर कई बार दे मारा था। जब आखिर में उसका वकील उससे मिलने आया तो उसके वकील ने उसका चेहरा, घायल और टूटी हुई नाक देखी। आखिर में वाई के लिए एक अस्थायी अदालत आयोजित की गई, लेकिन उसे ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आया कि अदालती कार्रवाइयों के दौरान क्या हुआ। एक और बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि इजरायली सेना ने बाल कैदियों की मुलाकात की संभावना को पूरी तरह से सीमित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जाहिर करना है कि इजरायली अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उल्लंघन में शामिल नहीं है। इजरायली मुकदमे से पहले वकीलों की कैदियों से मुलाकात के बारे में नियम बदलते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल है, ताकि वकील कानूनों के एक निश्चित सेट पर या किसी निर्धारित कानून व नियम पर भरोसा न कर सकें। मई 2004 में बच्चों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फिलिस्तीन विभाग के एक वकील ने ऑफर डिटेंशन सेंटर से संपर्क किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो जेल में 16 बच्चों से मिलने जा रहे हैं। काम के नियमों और कानूनों की बुनियाद पर उन्होंने संभावित लोगों के साथ नामों की एक सूची भी भेजी। अगले दिन वकील से ये कहने के लिए संपर्क किया गया कि उसे आधे घंटे में सेंटर पहुंचना होगा, अन्यथा बैठक या अपॉइंटमेंट कुछ और हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि वकील को 7 बच्चों से मिलने की इजाज़त है और बाकी 9 बच्चों से अभी भी मिलने की इजाज़त नहीं है। जब वकील ने वजह पूछी तो उन्होंने निम्नलिखित उत्तर सुने। उन्हें केवल उन बच्चों से मिलने की इजाज़त है जो बिना किसी आरोप या अदालत के आदेश के जेल में बंद हैं। वकील जल्दी से अपनी निजी कार लेकर चेक पोस्ट की ओर चला जाता है। फिर उसे इजरायली सैन्य अड्डे ओफर तक पहुंचने के लिए कचरे और कीचड़ से भरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। वो कई अन्य वकीलों को प्रतीक्षा करते हुए लाइनों में देखता है। बातचीत के दौरान उन्हें ये एहसास हुआ कि यात्रा की इजाज़त हासिल करने के लिए सभी को एक ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वकीलों में से एक ने बताया कि उन्होंने कई बार ओफर जेल को फ़ोन किया और हर बार एक सैनिक ने जवाब दिया और कहा कि ये एक पिज़्ज़ा शॉप, गोश्त की दुकान या एक सुपर मार्केट है। घंटों इंतज़ार के बाद आखिरकार वकीलों को अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। इसराइली सैनिक बच्चों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फिलिस्तीनी चैप्टर के वकील को एक कैंप में ले जाते हैं। बंदी हथकड़ी लगाकर कैंप में लाए गए। कैंप में हर समय 3 सैनिक तैनात रहते थे। सिपाही कुछ क्षणों के लिए भी बच्चों की हथकड़ी खोलना ही नहीं चाहते थे, ताकि वे आसानी से अपने प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकें। जब वकील ने सैनिकों की निरंतर उपस्थिति पर एतराज़ किया और आपत्ति जताई तो उन्हें केवल एक ही जवाब सुनने को मिला, या तो इन हालात में बैठकर बात करें या बाहर निकल जाएं। एक और दर्दनाक हालत यह है कि इजरायली फिलिस्तीनी बच्चों पर बहुत अत्याचार करते हैं और ये सारी यातनाएं संगठित और व्यवस्थित होती हैं। इन यातनाओं में पिटाई और सामूहिक पूछताछ और बच्चों के परिवारों के सदस्यों से मिलने जुलने पर रोक से लेकर कानूनी सलाह पर रोक, भोजन और जलपान से वंचित करना, बंदियों को अपमानजनक स्थितियों में डालना, कबूल नामे पर जबरन हस्ताक्षर कराना, अलगाव और एकांतवास कारावास, नींद से वंचित करना, धमकियां और डराना धमकाना वगैरह शामिल है। इस एपिसोड के आने वाले हिस्से में हम हर यातना के बारे में छोटा सा स्पष्टीकरण देने का प्रयास करेंगे। पहला, पिटाई। इजरायली सैन्यकर्मी और पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी से लेकर जेल में दाखिल होने तक बच्चों को शरीर के सभी हिस्सों, विशेषकर सिर और गुप्तांगों पर टॉर्चर करते हैं। फिलिस्तीनियों को मुक्कों, लात घूसों, केबलों, बंदूकों, ब्रेटन और यहाँ तक कि मेज और कुर्सियों के टुकड़ों से पीटा जाता है। बंदियों की पिटाई के दौरान बच्चों की आंखों पर पट्टियाँ बांध दी जाती हैं या विशेष प्रकार का काला चश्मा पहना दिया जाता है। वे और कुछ भी नहीं देख पाते। फिलिस्तीनियों के सिर मोटे बोरे से ढके हुए होते हैं ताकि वो कुछ भी ना देख सकें। इन बोरियों पर आमतौर पर उल्टी, मूत्र या मल पड़े हुए होते हैं। किसी बंदी का अपमान करना और उसकी बेइज्जती करना, हिरासत में लिए गए बच्चों के शरीर पर थूकना, बच्चों को कपड़े उतारने पर मजबूर करना, उन पर अल्लाह की लानत करने या रिश्तेदारों को गालियां देने का दबाव डालना वगैरह शामिल है। ये सब चीज़ें रोज़ाना सैकड़ों इजरायली यातनाओं के कुछ छोटे से उदाहरण हैं। परिवार के सदस्यों से मिलने और कानूनी सलाह पर रोक, इससे बच्चों में भय और मनोवैज्ञानिक अलगाव पैदा हो जाता है। इजरायली ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे न सिर्फ बच्चों पर अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है बल्कि वे सिस्टम के बाहर किसी भी गवाह को दुर्व्यवहार और उसके नतीजों का गवाह ही नहीं बनने देते। यातना का दूसरा रूप बच्चों को लंबे समय तक कठिन और दर्दनाक शारीरिक स्थिति में रखना है। ये क्रूर और दयनीय यातनाओं का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इस प्रकार के अत्याचार को शबाह कहा जाता है। इस यातना में बच्चे के हाथ को कुर्सी या ट्यूब से दर्दनाक स्थिति में बांध दिया जाता है या बच्चे को पंजों के बल लंबे समय तक खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता है। ये यातना का एक छोटा सा हिस्सा है। इस प्रकार की यातनाएं इजरायली डिटेंशन सेंटर्स और जेलों में दूसरे प्रकार की यातनाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा आम है, क्योंकि अत्यधिक दर्द के बावजूद यातना का असर बंदी के शरीर पर बहुत कम पड़ता है। किसी बच्चे को झकझोरना या पूरी तरह से बच्चे को हिला देना इजरायली यातना का दूसरा रूप है। इस प्रकार की यातना बच्चे को तब तक झकझोर कर दी जाती है जब तक कि बच्चा होश न खो दे और बेहोश न हो जाए, जबकि कभी कभी बच्चा मौत की आगोश में भी सो जाता है या कोमा में चला जाता है। दिसंबर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की यातना को अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन सबूत बताते हैं कि इजरायली अभी भी इस प्रकार की यातना का इस्तेमाल करते हैं। एक अन्य प्रकार की यातना बच्चों को लगातार डरा रही है। सैनिक बच्चों को लंबी सजाएं देकर परिवार के सदस्यों को कैद करके घरों को नष्ट व बर्बाद करके स्वयं या उनके रिश्तेदारों का बलात्कार करके आतंकित करते हैं और उन्हें डराते, धमकाते और भयभीत करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार और दबाव अत्यधिक संगठित उद्देश्य से किया जाता है। इजरायली फिलिस्तीनी बच्चे को इतना ज़्यादा डराते हैं या इतना ज़्यादा डराना चाहते हैं कि वो अंततः उन अपराधों को और उन आरोपों को भी कबूल कर ले जो उसने किए ही नहीं हैं। हथियारों से लैस इजरायली सैनिक, पुलिस बल या शबक के एजेंट पूरी तरह से बाहरी माहौल में बच्चों से पूछताछ करते हैं, क्योंकि बच्चा अपनी सबसे कमज़ोर अवस्था में होता है। बच्चा शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है और भय से ग्रस्त भी रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा प्रताड़ित बच्चों की गवाही तैयार की गई है, जिसमें सभी यातनाएं एक जैसी ही थीं। हिंसक यातनाओं और इजरायली दुर्व्यवहार के पैटर्न में हिरासत में लिए गए बच्चे पर मनोवैज्ञानिक दबाव और तनाव पैदा करने वाली रणनीतियां शामिल होती हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यातना के तरीकों का इस्तेमाल इजरायली शासन का जानबूझकर लिया गया फैसला है। एक निर्णय जिसकी सामान्य रणनीति कब्जे के खिलाफ किसी भी फिलिस्तीनी प्रतिरोध को कमज़ोर करना है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम फिलिस्तीनी बच्चों के जेल अनुभव के दौरान इस रणनीति पर लगातार अमल करने के विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अख्तर रिज़वी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।